अस्पताल के उस छोटे से कमरे में दोपहर की हल्की धूप खिड़की से छनकर भीतर आ रही थी। कमरे की सफेदी और मशीनों की आवाजों के बीच रैना अपने पिताजी के पास बैठी थी। एक ट्रे में सेब, पपीता और केले के छोटे छोटे टुकड़े काटते हुए वो मुस्कुरा रही थी। अब उनके चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई थी। कुछ दिन पहले अचानक उनका बीपी बहुत लो हो गया था। डॉक्टरों को रात भर उनका खास ख्याल रखना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ स्थिर था। हालात पहले से बेहतर हो रहे थे। पिताजी ने धीरे से पूछा, रैना, ये वो लड़का अखिल, ये क्यों आया था तुम्हारे साथ? मतलब तुम्हारा और उसका कोई खास रिश्ता तो नहीं है ना? रैना चौंकी नहीं। उसे अंदाजा था कि ये सवाल कभी न कभी जरूर आएगा। उसने जल्दी से हाथ के फल उन्हें थमाए और मुस्कुरा कर बोली, अरे पापा, बस ऐसे ही, आप परेशान हो गए थे ना उस दिन, तो मैंने उसे कॉल कर लिया। फिर बिना उसकी ओर देखे उसने सिर झुका लिया और अगला टुकड़ा काटते हुए बोली, आपको बताया था ना, अखिल की कंपनी में एक छोटी सी जॉब कर रही हूँ, तो बस उस लिहाज से जानता है मुझे। पिताजी ने एक पल उसे देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। शायद वो उसकी नज़रें पढ़ नहीं पाए, या शायद पढ़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बात को वहीं रोक दिया और फ्रूट खाने लगे। रैना की आंखें थोड़ी नम थीं। उसने खुद से कहा, क्यों हर बार जब कोई मेरा भला करता है मुझे जवाब देना पड़ता है? लेकिन वो जानती थी, उसकी आज़ादी, उसकी आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी किसी पर सिर्फ इसलिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी क्योंकि किसी ने मदद की पेशकश की है। उसी वक्त उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अखिल का कॉल था। रैना ने फ़ोन उठाया। हाँ, बोलिए। अखिल की आवाज़ में सच्चा अपनापन था। कैसे हैं अंकल, सब ठीक तो है ना अब? रैना ने अपनी आवाज़ को शांत बनाए रखा। हाँ, अब सब पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद अखिल ने फिर कहा, देखो रैना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेडिकल खर्च या कोई और मदद, तो बस एक बार बताना, संकोच मत करना। लेकिन रैना की आवाज़ अब थोड़ी ठंडी थी। धन्यवाद, पर नहीं अखिल, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगी जब तक वो मेरी मेहनत का नहीं होता। अखिल थोड़ा हिचका। मतलब? मतलब ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, जो जॉब आपने मुझे दी है, उसी के तहत जो भी पैसे मुझे मिलेंगे वही ठीक है। उसके अलावा अगर आप यूं ही कुछ मदद भेजना चाहते हैं तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं वो नहीं ले सकती। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। मैं वो लड़की नहीं हूं जो किसी से एहसान लेकर चल सके। फ़ोन के दूसरी तरफ अखिल कुछ बोल नहीं पाया। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर रैना ने फ़ोन काट दिया। अखिल अब अपने ऑफिस के केबिन में था। वो कुछ देर तक यूं ही अपनी टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाता रहा। मैंने तो बस मदद करनी चाही थी। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई प्रेजेंटेशन खुला था, लेकिन उसका ध्यान वहाँ बिल्कुल नहीं था। उसके मन में सिर्फ रैना घूम रही थी, वो लड़की जो ना तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है, ना किसी से उम्मीदें रखती है, ना किसी के करीब आने देती है। अजीब है ये लड़की, जिसे कोई चीज़ फ्री में नहीं चाहिए, ना सहानुभूति ना मदद। अखिल की सोच कुछ पल वहीं अटक गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद है उसमें। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी से टेक लगाई। दूसरी ओर रैना अपने पिताजी के पास फिर बैठ चुकी थी। उन्होंने हल्के से पूछा, फ़ोन किसका था? रैना मुस्कुराई, ऑफिस से था, बस अपडेट ले रहे थे। उसने फिर नज़रें नीचे कर लीं। कभी कभी सच्चाई को छिपाना भी एक किस्म का प्यार होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। रैना जानती थी कि अखिल की मदद में कोई छल नहीं था, लेकिन वो खुद को उस जगह पर नहीं देखना चाहती थी जहाँ वो किसी की दया या उदारता पर खड़ी हो। उसे अभी बहुत कुछ पाना था, खुद के दम पर। और दूसरी ओर अखिल धीरे धीरे खुद से एक सवाल पूछ रहा था, मैं क्यों बार बार रैना के बारे में सोच रहा हूँ? क्या सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ या उससे जुड़ने लगा हूँ? कहानी अब एक और दिशा पकड़ रही थी। जहाँ एक ओर अर्जुन और पूनम के बीच भावनाएं गहराती जा रही थीं, तो दूसरी ओर अखिल और रैना के बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था, जिसे अभी नाम मिलना बाकी था।